ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदिरये मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्।
श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 30वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 32। पारिजाते अंजसा लब्धे सारंगो अन्यत्र सारंग अन्य न सेवते त्वद अंग्रिमूलम् आसाद्य साक्षात् किम किम व्रणीमहि। पारिजातेंजसा लब्धे सारंगो नन्य सेवते त्वदंघ्रे मूलमासाद्य साक्षात् किम किम व्रणीमहि। पारिजातेंजसा लब्धे सारंगो नन्य सेवते त्वदंघ्रे मूलमासाद्य साक्षात् किम किम व्रणीमहि। पारिजातेंजसा लब्धे सारंगो नन्य सेवते त्वदंग्रे मूलमासाद्य साक्षात् किम किम व्रणीमहि। पढ़िए। पढ़ो पढ़ो आप पढ़ो। और पीछे से शब्दानुवाद। हाँ ठीक है पढ़। ठीक है शब्दानुवाद पढ़े। ठीक पारिजात नामक नैसर्गिक वृक्ष अंजसा पूर्णतया लब्धे प्राप्त करके सारंग भौरा अन्यत अन्यत्र न सेवते सेवन नहीं करता त्वदंघ्री तुम्हारे चरण कमल मूलम प्रत्येक वस्तु के मूलाधार आसाद्य पहुंचकर साक्षात प्रत्यक्ष किम क्या व्रणिमही मांगे। हे स्वामी जब भौरा दिव्य पारिजात वृक्ष के निकट पहुंच जाता है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ता क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जब हमने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है तो हमें और क्या वर मांगने की आवश्यकता है। मेरे पीछे दोहराएंगे हे स्वामी जब भौरा दिव्य पारिजात वृक्ष के निकट पहुंच जाता है तो वह उसे कभी नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार जब हमने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है हमें और क्या वर मांगने की आवश्यकता है। तात्पर्य जगतगुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जब भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में वास्तव में लगा हो तो उससे अन्य कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उसकी व्यस्तता अपने आप में पूर्ण होती है। जब भौंरा पारिजात वृक्ष के निकट आ जाता है तो उसे असीमित मात्रा में मधु प्राप्त हो जाता है। उसे दूसरे वृक्ष पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा में स्थिर हो चुका है तो उसे अनंत आनंद प्राप्त होता है। अतः उससे और कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पारिजात वृक्ष इस संसार में साधारण रूप से प्राप्य नहीं है। पारिजात वृक्ष का दूसरा नाम कल्प वृक्ष अर्थात मनोरथ पूर्ण करने वाला वृक्ष है। ऐसे वृक्ष से मोह मांगा वर प्राप्त किया जा सकता है। इस संसार में यदि नारंगी चाहिए तो वो नारंगी वृक्ष से मिलेगी और आम के वृक्ष से आम मिलेंगे किंतु पारिजात वृक्ष से जो चाहे सो मिल सकता है, चाहे आम चाहे नारंगी, सब मिल गया, चीकू सब एप्पल। चिंता मणि प्रकर कल्प कल्प चिंता मणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम्। ये वृक्ष वैकुंठ लोक में पाया जाता है। वैकुंठ लोक जिसे चिंतामणि धाम कहते हैं, ऐसे कल्प वृक्ष से घिरा रहता है। किंतु पारिजात वृक्ष इंद्रलोक में भी पाया जाता है। इस पारिजात वृक्ष को श्री कृष्ण अपने रानी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए लाए थे। इसी रानी और इसे रानियों के लिए बने द्वारका के महलों में रूप दिया गया था। भगवान के चरण कमल भी पारिजात रानियों के लिए निर्मित वृक्ष के सदृश हैं और भक्तगण भौंरे के समान है। वे सदैव भगवान के चरण कमलों में आसक्त रहते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वित। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरान्ते अदीव मे विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते ही कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्। भूतेर्महद्भिः मां पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूश पुरुष। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सुवलं कृषिष्ठ भगवन् वचांश मे। अखिल रस सिंधु दीन बंधु दया सिंधु भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राणधन भगवान श्री नंद नंदन की अहेतु की कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत सेवा प्राप्ति अर्थम हम आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 30वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 32 पर चर्चा होने का अवकाश है। यथामति यथारुचि थोड़ी बहुत चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। वैसे तो प्राचीन बरी के ये 10 पुत्र 10 प्राचेतस कहलाते हैं, चेतना के दृष्टि में अत्यंत समुन्नत माने जाते हैं। ये बहुत ऊंची चेतना के ये भक्त है। एक बात हम अवश्य कहना चाहेंगे, प्रचेत स्तुति करते हैं भगवान को और उसी भाव को हम कहने के लिए प्रयास करेंगे। भक्ति के बिना भक्तों की बात कही नहीं जाती, ये निश्चित बात है। ये रहे बहुत उन्नत कोटि के भक्त और बोलने वाला भक्त तो नहीं है, भक्ताभास भी होना बहुत दूर की बात है। सो कैसे करे, कैसे बोले? प्रचेतस 10 प्रचेताओं का जो कहना है उसको बढ़ा तो नहीं सकते, जहाँ तक हमारा अनुभव कहता है, लेकिन घटाना भी तो अच्छा नहीं है। कम से कम वहाँ तक पहुँच तो जाएं, उतना नहीं कर सकते। नारद जी को समझने के लिए नारद जी की स्थिति तक आना पड़ेगा। किसी बहू की तकलीफ जानने के लिए उस बालिका को बहू के स्तर तक आना पड़ेगा। पिता माता की पीड़ा को समझने के लिए बच्चों को चाहिए कि उस स्तर तक पहुंचे। पुत्र दशा में पिता की अवस्था को समझा नहीं जा सकता, इसलिए नारद जी क्या कहते हैं, प्रह्लाद जी क्या कहते हैं, प्रचेतसों ने क्या कहा, उनकी वो सीमा तक पहुंचना हम लोग जैसे पंगु व्यक्तियों के लिए सर्वथा असमर्थ है, ये असंभव है, बिल्कुल ये हम मानते हैं। लेकिन परंपरा है, पद्धति है, पर एक आशा जरूर है कि भागवत के माध्यम से सनातन गोस्वामी कहते हैं, अति नीच उच्चता कर, व्यक्ति ऊंचा नहीं है पर यदि भागवत का आश्रय लेता है तो व्यक्ति ऊंचा हो जाता है, ये निश्चित बात है। हमारे में कोई योग्यता नहीं है, पर वैष्णवों का आशीर्वाद प्रभुपाद जी की कृपा से थोड़ा बहुत प्रयास करके कहने के लिए प्रयत्न करते हैं। स्तुति प्रकरण चल रहा है भागवत में, ऐसे अनेक स्तुतियां हैं, कहते हैं भक्त की 100 से ऊपर 108 स्तुति है, वैसे मैंने गिना नहीं है, 96 हाँ, विद्वान लोग बैठे हुए हैं ये कह रहे हैं कि 96, 100 के आसपास 100 हैं, कई लोग 108 कहते हैं, जो भी हैं पर 100 के करीब स्तुतियां हैं। इन स्तुतियों को हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये भागवत के प्राण हैं, और स्तुति के माध्यम से हम भगवान के अनुभव एवं भक्तों के अनुभव को जान सकते हैं। अनुभव शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और अनुभव शब्द का अर्थ होता है जो भक्त लोग अनुभव करते हैं, समझते हैं, हृदयंगम करते हैं। अनुभव और अनुभव, ये दोनों का सम्मिश्रण है स्तुतियां। एक बात, प्राचेतस कुल मिलाकर 21 श्लोकों में स्तुति करते हैं, और स्तुति का प्रारंभ कब करते हैं, जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे मित्रों। भक्त तब तक स्तुति नहीं कर पाता जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। ठीक स्तुति करने के पूर्व ऐसा आया है, भगवान के दर्शन मात्र से उनके तमो और रज के अमल ध्वस्त हो गए, तमो रजो मला, भागवत के इस पीछे के किसी श्लोक में ध्वस्त तमो रजो मला, भगवान के दर्शन मात्र से उनके रजोगुण एवं तमोगुण नष्ट हो गए। प्रहलाद जी महाराज जी के प्रसंग में ठीक वैसे ही है। तत्कराघ्र स्पर्शा धोता खिला शुभ, भगवान के कर कमल के स्पर्श मात्र से प्रहलाद महाराज जी के सारे अशुभ नष्ट हो गए। एग्जैक्टली आप देखिए, भागवत के जत्र तत्र भगवान की कहीं भी स्तुति होती है, भगवान के साक्षात्कार के बाद ही प्राय होती है। ऐसा क्यों होती है? क्योंकि जब तक हमारी वाणी, हमारी चेतना रज और तमस दूषित है, तब तक हम भगवान के साक्षात्कार नहीं कर सकते अथवा भगवत विज्ञान को नहीं समझ पाते, राइट? तमो रजो धर्मे ना पाइए कृष्णेर मर्म। जब सनातन गोस्वामी देहत्या करने जा रहे थे, महाप्रभु ने कहा सनातन देह त्यागे कृष्णे यदि पाए, कोटि देह क्षण यामी छाड़िते पारे। हे सनातन, यदि देहत्या करके कृष्ण मिल जाते तो तुमको कम से कम देहत्या करने के लिए 2 मिनट का समय लग सकता है, पर हम 1 क्षण में 1 करोड़ शरीर का त्याग कर सकते हैं। लेकिन देहत्यागे कृष्णे ना पाए, पाइए भजने। देहत्याग करने से कृष्ण नहीं मिल पाता, कैसे मिलते हैं? भजन में मिलते हैं। पर भजन अनुभव, अनुभवों का दर्शन कब तक नहीं होता मेरे मित्रों? जब तक रज और तम गुणों का प्रभाव रहता है। इसलिए जैसे प्रहलाद महाराज जी के मस्तक पर भगवान नरसिंहदेव करकमल रखते हैं, तो तुरंत उनके चित्त में दिव्य ज्ञान की अनुभूतियां हो जाती है। जैसे ध्रुव महाराज जी के कपोल पर शंख का स्पर्श होता है, ध्रुव महाराज गदगद हो जाते हैं, उनकी वाणी लड़खड़ाती है, नेत्रों से सावन भादों की पनारे बहती है। उस गदगद वाणी से, उस लड़खड़ाती हुई वाणी से, उस भाव से, परम विनम्रता से युक्त होकर भक्त भगवान के यशोगान करने लगता है। जो अंत प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्तम संजीवयति अखिल शक्ति धर स्वधामना। वे प्रभु हमारे अंत स्थल पर प्रविष्ट होकर हमारी वाणी, हमारी चेतना, हमारे अंग अंग में नई अनुभूतियां, नई शक्तियों का संचार किया है, तब तो हम बोल पाते हैं। इसलिए तद दर्शन धूता खिला शुभ, तद दर्शन धूता रजो तमो मला। यहां भगवान के दर्शन करने मात्र से प्रचेतसों के मल यानी कि रज और तम अपसारित हो, इससे ये निश्चित हो गया जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो हमारे अंदर पूर्णतया रज एवं तम के भाव अपसारित नहीं होंगे। और जब तक रज तम है तब हम भगवान के साक्षात्कार कैसे करेंगे? कैसे अनुभूतियां होगी? स्तुति कैसे करेंगे?
तुम्हारी ही कृपा तुम्ही रघुनंदन जानई भगत भगत उर चंदन। ईश्वरेर कृपालेस हयाछे जहारे सेत ईश्वर तत्व जानिबारे पारे।
ईश्वर की कृपा, जरा सी कृपा जिस पर हो गई है, वही ईश्वर तत्व को जान सकता है, वही ईश्वर के अनुभव को वर्णन करने में समर्थ हो सकता है, वही व्यक्ति अपनी अनुभूति को जगत सामने में प्रकट करने में समर्थ होता है। अन्यथा हमारी अनुभूतियों का क्या मूल्य है? हमारी अनुभूति दो कौड़ी की। इसलिए ईश्वर की कृपा है, तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन। हे रघुनंदन, आपकी कृपा से आपके भक्तजन आपको जान पाते हैं, वरना आपको जानना असंभव है। भक्त जान गया, जो ही भगवान का साक्षात्कार होता है, एक अद्भुत घटना हो जाती है। क्या घटना होती है? जिस संसार को हम इस तरह से देखते हैं, वो संसार हमारे लिए हमेशा के लिए लुप्त हो जाता है। ये संसार का स्वरूप मेरे मित्रों इस तरह का नहीं रहता। कृष्ण ग्रह गृहितात्मा न वेद जगत ईदृशम। जैसे नींद खुलने पर स्वप्न का स्वरूप हमारे लिए सपना हो जाता है, ऐसे ही भगवान का साक्षात्कार होने पर जीव का स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, फिर वो माया संसार में भटकता नहीं। तब अपनी अनुभूति कहता है, देखो मैंने देखा है। क्या देखा है? मैंने उसको देखा है। तुम्हारी अनुभूति क्या है? तो भक्त अनुभूति वर्णन करते हैं। जैसा कि हमने कहा है, अनुभव और अनुभव। अनुभव के वर्णन करने के बाद भक्त कभी कभी अनुभूतियां वर्णन करते हैं स्तुति में, जैसे प्रह्लाद करते हैं, ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोध सिद्धा सत्विकतान मतयो वचसाम प्रवाहे नाराधि तुम पुरुगणेरधुना पिप्रो किम तुष्टुमहति भवान हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, ब्रह्मादि सुरगण देवगंधर्व सत्य गुण में अवस्थित होने पर भी वाक्य अलंकार से युक्त स्तुतियों के द्वारा आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, और हम असुर कुल में जन्म तम और रजते ग्रसित व्यक्ति आपकी प्रसन्नता का विधान कैसे कर सकते? ध्यान देना चाहिए, कृपा का दूसरा स्वरूप है भक्त अपने आप को सबसे हीन मानता है। जो भक्त जितना हीन मानता है, मानना चाहिए कि उस भक्त पर हरि की उतनी कृपा है। पूरे भागवत में प्रह्लाद कहते हैं हम असुर जाति के उत्पन्न हुए, पूर्ण कृपा है। विभीषण कहते हैं तामस देह को छु साधन नाही। हे हनुमान, इस शरीर तामसी है, इसमें साधन कुछ भी नहीं है। कविराज गोस्वामी कहते हैं मोर नाम लय जई तार पाप है, मोर नाम लय जई तार पुण्य क्षय। ये कृपा का स्वरूप है। जिस पर कृपा हो जाती है वो अपने आप को तुच्छ मानने लगता है। विभीषण के वाक्य को सुनकर के हनुमान कहते हैं कहूं कवन में परम कुलीना कपि चंचल सब भांति विधेना प्रात लई जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। संत भक्त जन जिनको अतुलित बल धामम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहकर के परम पवित्र मानते हैं, वो भक्त अपने आप को इतना तुच्छ मानता है, वो कहते हैं कि जो प्रातः काल मेरा नाम लेगा उसका भोजन उसको नसीब नहीं होगा। ये कृपा, ये अनुभव है। इसलिए प्रह्लाद का अनुभव हो रहा है, यहां प्रचेतस एक अनुभव बता रहे हैं। ये स्तुति पारिजाते जसा लब्धे सारंगो अन्य न से बते त्वदंघ्री मूलमा साध्य साक्षात किम किम वृणी महे। हे प्रभु, पारिजात पुष्प को पाने के बाद क्या भौंरा किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करता है? नहीं करता। पारिजात क्या है? पारिजात एक वृक्ष है जिसके पुष्प अत्यंत सुगंधित माने जाते हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं वो वृक्ष यहाँ उपलब्ध नहीं होता। पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष में कोई अंतर नहीं है, पारिजात वृक्ष से जो भी मांगो सो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भौंरा का उदाहरण देने के पीछे यही कारण है मेरे मित्रों, पारिजाते अंजसा लब्धे, अनायास अगर पारिजात वृक्ष किसको मिल जाता है, भौंरे को मिल जाता है। क्यों भौंरा को मिल जाता है? मेरी माताओं, संसार में पांच प्राणी ऐसे हैं जो एक एक वस्तु के प्रति आसक्त होकर के अपने प्राण तक खो देते हैं, पर मित्रता अथवा प्रेम को छोड़ते नहीं है। कुरंग, मतंग, पतंग, भृंग, मीन, हता, पंचभी रेव पंच, एको प्रमादिस कथम हन्यते, यह सेवते पंचभी रेव पंच। बोले पांच प्राणी, कुरंग माने हिरण, मतंग माने हाथी, कुरंग मतंग पतंग, पतंग माने फतिंगा, भृंग माने भौंरा, और मीन माने मछली। ये पंच जीव पंच वस्तु से आकृष्ट होकर के प्राण त्याग देते हैं। कुरंग को शब्द अत्यंत प्यारा होता है, वो व्याध के संगीत से मोहित होकर अपने प्राण गंवा बैठता है। मतंग स्पर्श का तरह, हथनियों के स्पर्श प्राप्ति के लिए मतंग अपना जीवन जोखिम में डाल देता है। पतंग रूप से प्रभावित होता है, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नासाय समृद्ध वेगा, रूपाकर्षण होता है पतंग को। और भृंग माने भौंरा, भौंरे को गंध का आकर्षण होता है, और मीन मछली उसको रस आकर्षण होता है। जैसे भौंरा रस के बिना रह नहीं सकता, ऐसे भक्त भगवान के बिना रह नहीं सकते। क्यों? चाणक्य पंडित कहते हैं, कहते संसार में प्रेम तो अनेक देखे हैं, लेकिन भौंरा का जो प्रेम है वो कुछ विशेष प्रेम है। बंधनानी खलु संति बहुनी, प्रेम रज्जु दृढ़ बंधनम अन्यत, दारु भेद निपुणोपि षडंगरी निष्क्रिय भवती पंकज कोशे। बोले बंधन तो अनेक प्रकार के हैं, पर भौंरा और पुष्प का प्रेम कुछ विलक्षण है। बोले क्या विलक्षण है? बोले वो इतना विलक्षण है कि वो पंकज कोश में कमल में कैद हो जाता है, और वो प्रेम के कारण यद्यपि भौंरा वो दारु भेद लकड़ी को छेद करने में समर्थ होता है, लेकिन पंकज से प्रेम के कारण उसके कोमल पंखुड़ों को वो आघात नहीं करता, और शाम ढल जाती है उसी के भीतर भौंरा रहता है और खत्म हो जाता है। बंधनानी खलु संति बहुनी, अनेक प्रकार के बंधन है, पर प्रेम का बंधन कुछ विशेष है। बोले प्रेम भी विशेष किसके पास है? बोले दारू भेद निपुणोपी, दारू माने लकड़ी, लकड़ी को छेद करने की ताकत रखने वाला भौंरा वो कमल के कोष में बंदी हो जाता है। क्यों? वो उसकी गंध लुलुपता है, वो कमल को छोड़ नहीं पाता। वो सोचता है आज शाम बीतेगी, कल सवेरा आएगा, फिर सूर्य उगेंगे, फिर कमल खिलेगा, फिर मैं आनंद लूंगा। इतने में हाथी आता है और पंकज को उखाड़ करके खा जाता है, सारा सपना चूर चूर हो जाता है। नारी उहेद निपुणोपि षडंगरी निष्क्रिय भवती पंकज कोशे। ओहो, हिटलर भी अपने प्रेमिका के पास निष्क्रिय हो जाता है। ये होता है प्रेम का एक बंधन है। अब प्राचेतस कहते हैं, हे प्रभु, यदि कोई भौंरा उसको पारिजात मिल जाए, क्या वो सामान्य पुष्प के पास जाएगा? क्या आपको रसगुल्ला मिले आपको गुलगुला पसंद होगा? किसी को पसंद नहीं होगा। रसो वर्जम रसो पश्य परम दृष्टवा निवर्तते, भगवत भक्ति भगवान के चरण कमल जिनको प्राप्त हो गए और उनको और किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रहेगी। आप श्लोक को देखिए, ये प्रचेतसों का अनुभव है, ये अनुभूति है। उनको वर मांगने के लिए कहा गया है और वो उदाहरण देकर कहते हैं, अगर पारिजात पुष्प किसी भौंरा को मिल जाए वो भौंरा और दूसरे पुष्प पर नहीं जाता है। इसका अर्थ होगा कि त्वदंग्रे मूलम आसाद्य, आपके चरण कमल हमको मिल गए और हम भक्त रूपी भौंरे हैं। अगर सचमुच हम भौंरे हैं फिर आपके चरण कमल का परित्याग करके हम कहां जाएं? जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे। जैसे जहाज के पंछी को उड़ा दिया जाता है वो पुनः पुनः जहाज पर आ जाता है, ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का मन भगवान के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाता है। ये प्राचीन वर्य के पुत्रों का अनुभव है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ उठता है कि प्रचेतसों का मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में क्यों लग गया, क्या कारण है? क्या कारण आप समझते हैं कि वो कहते हैं कि हम आपके चरण कमल नहीं छोड़ सकते, हमको वर नहीं चाहिए, क्यों ऐसा कहते हैं? केवल प्रचेतसों की बात नहीं है, ऐसे भागवत शास्त्र में हजारों भक्तों की कथा है जिनको प्रभु मिले उनको कुछ नहीं चाहिए। सबसे अर्थार्थी भक्तों में सबसे प्रधान माने जाते हैं महाराज ध्रुव। जब ध्रुव को वरदान देने के लिए प्रभु ने कहा, उन्होंने कहा, प्रभु काचम विचन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न जाचे। प्रभु कांच के टुकड़ों के पीछे में भागा, अब मोती मिल गई, कंचन मुझे मिल गया, अब कांच के टुकड़े से हमारा क्या काम है? हर एक भक्त, वृत्रासुर भी यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहाय कांक्षे। हे प्रभु, आपके बिना हमको कुछ भी नहीं चाहिए। प्रत्येक भक्त का यही अनुभव है। प्रहलाद से पूछा गया, आप वर मांगो, प्रहलाद ने क्या कहा? हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ वर देना चाहते हैं ऐसा करिए, कामानं हृदि असंग्रहोऽहम् भवान वृणे वरम। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे हृदय से सारी कामनाओं को उखाड़ करके फेंक दीजिए, ये वरदान है। और साक्षात यादवेंद्र सरकार भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, न पारमिष्ठ्यम न सार्वभौम न महेंद्र धिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मय्यार्पितात्मा इच्छति मद विनान्यात्। हे उद्धव, मेरे प्रेमी भक्त ना तो सार्वभौम पदवी की कामना करता है, ना तो इंद्र पद की लालसा उसके चित्त में है, ना तो रसातल जाकर भोग करना चाहता है। मानो उद्धव जी पूछते हैं, क्या चाहता है? मुक्ति चाहता है क्या? ना पुनर्भवम, और पुनर्भव भी नहीं चाहता, अपुनर्भवम नहीं चाहता, फिर क्या चाहता है? मद बिना इच्छति अन्यत, मेरे अतिरिक्त उसको कुछ नहीं चाहिए। हजारों लाखों उदाहरण है, ये तो बड़े बड़े भक्त है। छोटे छोटे भक्त देखिए, केवट हैं, सवरी है, श्रीधर हैं। केवट को प्रभु जी ने एक मुद्रिका दिया, सीता जी से कहा, अब देवी जी केवट ने हमको पार उतार दिया है, अब उनको कुछ उतराई देनी चाहिए। अब केवट को जब प्रभु उतराई देते हैं, केवट ने क्या कहा? अब कछु नाथन चाहिए मोरे,
दीन दयालो अनुग्रह तोरे अब कछु नाथन चाहिए मोरे। दीन दयालो अनुग्रह तोरे,
हे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मानो प्रभु पूछे क्या चाहिए, हे दीन दयालु बस मुझे आपकी कृपा चाहिए। एक केवट का ये अनुभव है, सुग्रीव से प्रभु ने पूछा सुग्रीव आपको क्या चाहिए, सुग्रीव ने कहा हे प्रभु आप इसी तरह से कृपा मुझ पर बनाए रखिए। अब मोहि कृपा करहु एही भांति सब तजी भजनो करहु दिन राति। हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करुणा बनाए रखे मैं सबका परित्याग करके आपका भजन करता रहूं। ये है भक्त की अनुभूतियां है, सेम बिल्कुल सेम अनुभूति है। पारी जाते जसा लब्धे सारंगो अन्यन्न सेवते त्वदंघ्रि मूलमा साध्य साक्षात किम किम वृणी मही। हे प्रभु मुझे और किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है, नहीं चाहिए मुझे। अनेक वस्तु हमने देख लिया, महाप्रभु ने भी कहा नाही मांगी देह सुख कविता सुंदरी अहेतु की भक्ति कृष्ण देह कृपा करी। हे प्रभु हे कृष्ण बस हमें आपकी भक्ति चाहिए। कितने भक्तों का नाम गिनाए, जो भी थोड़ा छोटे मोटे याद आते हैं, आदि शंकराचार्य भगवान के अनन्य भक्त रहे। न बेजाचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम न याचे हम रम्याम सकल जन काम्यम बरवधुम सदा काले काले प्रमथ पति नाम गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुम्हें। से कुछ नहीं चाहिए लेकिन हमको तो सब चाहिए। क्यों चाहिए, क्या कारण, क्यों हमारी कामना है, क्यों हमको इतना उपदेश सुनने के बाद भी हमारी कामनाओं की शांति नहीं होती है, क्या चाहिए, क्या कारण है। मेरे मित्रों बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, दो बात, एक तो भक्त की कृपा, एक भगवान की कृपा। अगर यदृच्छया भगवान की कृपा मिल जाए वो भक्त निष्काम हो जाएगा। क्यों निष्काम हो जाएगा, क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन, क्यों होगा बलराम प्रभु। जानता मानता कुछ नहीं भाई, जब भक्त प्रभु का साक्षात्कार करता है वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जानत अधिकारी, कविराज गोस्वामी की लेखनी कहती है चैतन्य चंद्रेर कृपा हया छे जहारे चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखीते पारे। जिस पर महाप्रभु की कृपा हो गई उसको कौन रोक सकता है, माया की कितनी ताकत है। माया तब तक काम करती है मेरे मित्रों जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है। जो ही प्रभु की कृपा होती है, प्रभु का साक्षात्कार होता है, भक्त चिदानंद शरीर को प्राप्त करता है। क्योंकि चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है, भौतिक कामना उसके भीतर आए कैसे, ये विज्ञान है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भक्त कोई सोच करके कामना को नहीं चाहता है, नो। जैसे पेट जब भर जाता है तो भक्त स्वाभाविक रूप से भोजन से वैराग्य प्राप्त करता है, ऐसे ही ये जो अनुभूतियां हैं प्रचेतसों की, ये कोई सामान्य शिक्षा के आधार पर नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है। जब चिन्मय भाव को भक्त प्राप्त करता है तो उनके भीतर और कामना उत्पन्न नहीं हो पाते। जैसे किसी धान को, किसी गेहूं को अगर अग्नि में भूंज करके खेत में डाल दिया जाए तो उनके भीतर और बीज अंकुरित नहीं हो पाएंगे। इसलिए भगवान के साक्षात्कार होने के बाद ये जीवाशय, ये जो हमारा हृदय है, ये और भौतिक नहीं रह जाता, क्योंकि साक्षात्कार तो पहले होता है भीतर, वो और मल से युक्त नहीं होता। तद दर्शना, उनके दर्शन से ध्वस्त रजो तमला सुभा, उनके तम और रज ये सारे मल ध्वस्त हो जाते हैं, ये विज्ञान है। इसलिए हमको जो कामना सता रही है, इसके पीछे एक कारण है कि भगवान का साक्षात्कार नहीं है, नंबर वन। नंबर टू बात यह है, अगर भगवान की कृपा मिल गई तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं मिली तो वीर राघवाचार्य एक प्रस्ताव रखते हैं, बोले प्राचेतस, इनके भीतर जो निष्कामता आ गई कैसे, बोले भागवत संगत्वेन भगवत गुणानुभावेन निर्मल मतित्वात्, क्योंकि भगवत संग प्राप्त हो गया और जैसे ही भगवान के रूप लीला गुण का अनुभव होने लगा तो ये सामान्य भौतिक वर उनको तुच्छ लगने लगा। ये भौतिक विज्ञान है, इसमें किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं चलेगी, या तो भक्त की कृपा या तो भगवान की कृपा, भक्त की कृपा, भगवत संग। अच्छा, प्रचेतसों को किसका संग प्राप्त हुआ, भगवान शंकर की संगति है, और प्रचेतस कहते भी है, प्रभु आपके भक्त के क्षण संग मात्रण हमारी ये स्थिति हुई है, क्षणमिह सज्जन संगति रेखा भवति भवारण वेतरणे नौका आदि शंकर कहते हैं। तुलयाम लवेनापी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुतासक तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरव तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत संग। एक सामान्य से सामान्य राक्षसिनी भी ये अनुभव को प्राप्त कर लेती है, इसलिए कोई कृत्रिमता की आवश्यकता नहीं है। जो ही भगवान की कृपा भक्तों को मिल जाती है, जैसे ही भक्तों की कृपा भगवान को मिल जाती है, वो भक्त ऑटोमेटिक निष्काम हो जाता है। लेकिन प्रभु मिले तो कैसे मिले, ये सारी ऐसी टेढ़ी चाल है, एक भीतर से ऐसे चैन है, भक्त मिले तो प्रभु की कृपा से भक्त मिले और भगवान मिले तो भक्त की कृपा से भगवान मिले, नहीं तो ये अनुभूतियां होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए शुद्ध सत्व पर जब प्रचेत स्थित हो गए, उनके भीतर रज तम का संपूर्ण तिरोहित हो गया, अब वो कहते हैं प्रभु और हमको कुछ नहीं चाहिए, नाथ न अब कछु चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, प्रभु और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। ये निष्कामता उनका स्वतः सिद्ध है, खास करके जो भी हमारा थोड़ा बहुत अनुभव है, हम वैराग्य को सेपरेट नहीं मानते हैं, वैराग्य इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ भक्ति, भक्ति परेशानु भवोर विरक्ति अन्यत्र चैस त्रिक एक काल प्रपद्य मानस्य यथास्नतस्यो तुष्टि पुष्टि खिद पायोनु घासम। जैसे एक एक कोर भोजन करने से क्षुधा की पीड़ा शांत हो जाती है, ऐसे ही ज्यों ज्यों हम भगवान के स्मरण करते चले जाएंगे उतने उतने हमारी कामना शांत होती चली जाएगी। दिस इज द बाय प्रोडक्ट है। इसलिए प्रचेतस एकदम सहज भाव में कह रहे हैं, प्रभु आपके चरण कमलों की सेवा छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे। प्रभु पाजी लिखते हैं बिल्कुल पूर्ण हो जाता है भक्त, उसको और किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती। ध्यान देना चाहिए, जैसे हमने कहा उनके अंदर जो विनम्रता आ जाती है, उनके अंदर जो निष्कामता आ जाती है, उनके अंदर जो उदारता आ जाती है, उनके अंदर जो करुणाशीलता आ जाती है, उनके अंदर जितने भी भाव विकसित तो हो जाती है, वो केवल चिंतन परक नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर ये गुण सारे विराजमान है, भक्त के अंदर भी ये हृदय अपने आप में ये गुण आविरस्त है। इसलिए मेरे मित्रों कृपा चाहिए, भगवान के कृपा और भक्तों के कृपा। मुझे वीर राघवाचार्य की पंक्ति बहुत अच्छी लग रही है, भक्त कृपा प्रसादात, भक्त के क्षण संग मात्र से अब ये इतनी बड़ी सिद्धि को प्राप्त हो गए। जरा विचार करो, कामी के संग में संग प्राप्त करोगे तो काम भावना बढ़ जाएगी, एक निष्काम भक्त के संग प्राप्त करेंगे तो उनके अंदर निष्कामता बढ़ जाएगी। इसलिए प्रचेतस कहते हैं प्रभु आपके भक्त के क्षण संग मात्रण हमारे भीतर ये निष्कामता आ गई। इसलिए जीवन में यदि कोई सफल होना चाहता है, खास करके हम लोग के लिए सर्वोच्च सिद्धि है कि एक भक्त की कृपा को प्राप्त कर लेना। भगवान की कृपा तो बाद में मिलेगी, पर यदा कदा यदि किसी भक्त की कृपा हम पर हो गई तो हमारी सिद्धि हो गई। जिस कामना को हम उखाड़ फेंकने के लिए महाप्रयास करते हैं वो कामना उठेगी नहीं। एक बात, आप लोग प्रचार में जाते हो, अधिकतर लोग पूछते हैं कि मन कृष्ण में नहीं लगता। अधिकतर लोग पूछते हैं, क्या आपने सुना नहीं गोपियां ध्यान करती थी, कोई एक गोपी ध्यान करती थी, उनको नारद जी ने पूछा अरे गोपी तू काहे का ध्यान कर रही है। ना हम तो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कृष्ण की वजह से हमारे घर के काम धंधे चौपट हो गए, इसको कैसे मन से हटाया जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कोई कायदा बताओ हट जाए मन से कृष्ण। नारद जी सुन करके स्तंभित होते हैं। इसलिए नारद जी की अनुभूति सुनो। नारद जी ने जब नारद भक्ति सूत्र लिखा, उन्होंने ढूंढा कि भक्ति के आचार्य अथवा आचार्य कौन बनेंगे, तो नारद जी के सामने आया यथा ब्रज गोपी का नाम। अगर किसी को भक्ति सीखनी है वो ब्रज गोपियों के चरण कमलों का आश्रय ले ले। अब प्रश्न उठेगा कृष्ण कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, मन कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे लगेगा मेरे प्रभु, क्यों मन भटकता है, उसका बीज क्या है। जैसे हमने विज्ञान बताया कि कामना इस तरह से नहीं जाएगी, जैसे ही ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा भक्तों की कृपा मिल जाएगी इमीडिएटली, जैसे ही गुलाब जामुन टकाटक खाएंगे वैसे ही भूख खत्म इमीडिएटली। ऐसी क्या करने से हमको मिल जाएगी, क्या होगा, क्या आप सोचते हैं, आप सभी विद्वान हो, क्या कारण, कैसे। एक कारण, एक कारण ना, भक्तों का संग तो निश्चित रूप से, पर कृष्ण के बिना जो इतर कामनाएं उठ रही है उसके मैं प्रश्न कह रहा हूं कि कामना क्यों बार बार आ रही है। एक वस्तु मेरे मित्रों आप भी अनुभव करो घर में जाकर के, कृष्ण के साथ हमारा संबंध दृढ़ता से प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहा है। इसलिए सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने से पहले महाप्रभु सबसे पहले संबंध विज्ञान की चर्चा करते हैं। आप कितना प्रयास कर लीजिए, यदि हमारा चित्त की डोरी किसी इतर वस्तु से जुड़ी हुई है, लाख प्रयत्न करने पर भी कृष्ण मन मस्तिष्क में उतरने वाले नहीं। इसलिए संतों ने कहा हो ही राम को नाम जपू तुलसी तजी कु समाज, राम के होकर के राम के नाम जपा जाता है, कृष्ण के होकर के कृष्ण के नाम को जपा जाता है, बस सिंपल तरीका यही है। पत्नी के होकर के ईश्वर नहीं आएगा। कैसे आएगा? जो जिसका तुम हुए हो वही तो तुम्हारे मन में आएगी। तुम्हारे मन में जिसको तुमने बैठा रखा है वही तो तुम्हारे मनमानस में आएंगे। कैसे आएंगे? इसलिए भक्तों, हम लोगों की गलती यहीं पर अटकते, यहीं पर भारी गलती है कि हम कृष्ण के साथ जो संबंध को दृढ़ता से रखना चाहिए वो नहीं। आप देखो बिल्कुल प्रयास नहीं लगेगा। ये हमारी छोटी सी अनुभूति है, हाथ जोड़ करके हम निवेदन करते हैं। आप करके देख लीजिए, अगर एक बार भी कृष्ण के साथ हमारा पक्का संबंध हो गया मेरे तो हाँ, फिर दूसरा को बताना नहीं पड़ेगा। दूसरा कोई वो आप, इसलिए तो ब्रह्मचारी महान है। ये जो लाल कपड़े पहन रखे इसका कारण क्या है? नहीं, इसे लाल कपड़े का अर्थ होता है हम मौत के पथिक है। ये जो केसरिया वस्त्र हैं ये मृत्यु की निशानी है। यस, यानी कि हमने अपने आप को मार डाला है। अब हम अपने के नहीं है, अब हम ना तो उड़ीसा के हैं, ना तो हम बंगाल के हैं, ना तो हम हरियाणा के हैं, ना तो हम यूपी के हैं। फिर कहाँ के हो? किसके हो? भगवान, इतनी हिम्मत भगवान तक चले जाओगे? कहाँ जाओगे? हम तो अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों के दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास। त्वत्वृत्य वृत्य वृत्यस्य वृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। डायरेक्ट स्मरण करने के लिए आचार्य वो कुलशेखर ने नहीं कहा, वृत्य 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 वृत्यस्य वृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। इसलिए संबंध पक्का है। संबंध लैया भजे कृष्ण तारे नाहीं तेज। संबंध एक बार पक्का। इसलिए आचार्य भगवान ने साफ साफ कहा है, यो मामैव असंगमूढ़ हो जानाति पुरुषोत्तमम। ये दोगलापन में नहीं है। असंगमूढ़ माने बिल्कुल क्लियर कट अनुभव किया है। क्या अनुभव किया है? कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। जिस दिन हमको पता चल जाएगा कृष्ण मेरे मित्र है, उसी दिन सारे मित्र धुआं में चले जाएंगे। जिस दिन पता चल जाएगा कृष्ण मेरी मां है, मेरी मां आग में जाए। भरत ने तेजियो भरत महत्व है कि नहीं, बलि गुरु तेजियो। बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, भरत महतारी, भरत ने मां का त्याग कर दिया। इसलिए हमारे अंदर संबंध ज्ञान की दृढ़ता नहीं है। अब साक्षात्कार में क्या होता है? संबंध ज्ञान पक्का हो जाता है, असंभावना बिल्कुल दूर हो जाती है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावो निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन प्राप्त करने के बाद भक्त अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है बस। और एक बार स्वरूप को प्राप्त हो गया वो भक्त और इसी संसार का नहीं रहे। इसलिए गोपियां कहती है, स्मेरा भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि बंसी न्यस्ताधर किसलयम उज्ज्वलम चंद्रकेण गोविंदाख्याम हरितनुमितो केसी तीर्थोपकंठे मां प्रक्षिष्ठा सखी जदि तब बंधु संग अस्तिरंग। हे सखी, आप केसी घाट में मत जाना। अगर केसी घाट में त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हुए श्याम सुंदर के साथ एक बार आंख मिल गई, फिर तेरा संसार नष्ट हो जाएगा। तू और कहीं की नहीं रहेगी, तेरा संसार डूब जाएगा। इसलिए संसार डूबाने के लिए प्रयत्न मत करो, ऐसा काम करो संसार डूब जाए। वैराग्य लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा भजन करना चाहिए कि वैराग्य सिद्ध हो जाए। इसलिए मेरे मित्रों, सिद्धांत यही है कि भक्त की कृपा हो जाए। भगवत क्षण संग मात्रेण भगवत गुणानुभावेन तुच्छम वरम किम वृणीमहे। ये किम किम है प्रभु, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए? इसका अर्थ होता है हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो केवल आप चाहिए। हमको और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप ही हो। यही है प्रचेतसों की अनुभूति। हम समझते कि आप ज़्यादा गंभीर हो गए, हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।